पूर्ण तो किसको कहा जाता है, जो देश से भी अपरिछिन्न हो, काल से भी अपरिछिन्न हो और वस्तु से भी अपरिछिन्न हो, उसे पूर्ण कहा जाता है। और ये मंत्र बता रहा है कि अधः यानी परमात्मा ब्रह्म पूर्ण है, तत्पद का लक्ष्य, तत्त्वमसि वाक्यगत तत्पद का लक्षार्थ ब्रह्म है और वो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न होने से पूर्ण है। आकाश देश से अपरिछिन्न है, काल से तो परिछिन्न ही हो जाता है। इसलिए काल से परिछिन्न होता है कि काल से परिछिन्न कौन होगा, जो एक समय रहता हो दूसरे समय न रहता हो, किसी समय है किसी समय नहीं है, जो पदार्थ वह काल से परिछिन्न कहलाता है। तो ये जो आकाश है ये अभी है, अपने उत्पत्ति से पहले नहीं था। आकाश भी तो पांच भूतों में से एक भूत है और इसकी उत्पत्ति हुई है। तैतृय उपनिषद में बताया गया कि परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत। तो आकाश संभूत हुआ यानी उत्पन्न हुआ है। और गीता आप पढ़ते ही हैं, गीता कहती है कि जो उत्पन्न होता है उसका नाश अवश्यंभावी है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो आकाश जात है यानी उत्पन्न हुआ है, आकाश का जन्म हुआ है तो विनाश भी होगा। इसलिए अपने उत्पत्ति से पहले भी आकाश नहीं है, नहीं है का मतलब अभिव्यक्त नाम रूपात्मक नहीं है जैसा इस समय है, और नाश के बाद भी जैसा इस समय आकाश का आप भूताकाश का स्वरूप समझते हैं अवकाशात्मक ऐसा नहीं रहेगा। तो ये जो अवकाशात्मक आकाश है ये अपने उत्पत्ति से पहले भी अपने इस रूप से नहीं है जैसा इस समय हम आकाश का अनुभव करते हैं, ऐसा अपने उत्पत्ति से पहले नहीं, विनाश के बाद नहीं रहेगा ऐसा। तो ये काल से परिछिन्न हुआ, काल से परिछिन्न वो होता है जो एक समय रह रहा है दूसरे समय नहीं रह रहा है। तो अभी है स्थिति काल में तो लय के बाद में नहीं रहेगा, इसलिए काल से परिछिन्न है। काल से परिछिन्न होने से आकाश को पूर्ण नहीं कहा जाता। तो आकाश जैसे देश से अपरिछिन्न है ऐसा ब्रह्म भी देश से अपरिछिन्न है, और आकाश जैसे काल से परिछिन्न है ऐसे ब्रह्म काल से परिछिन्न नहीं है। इसलिए आकाश के तरह वह अपूर्ण नहीं है, और आकाश वस्तु से भी परिछिन्न है। काल से परिछिन्न के तरह वस्तु परिछिन्नता भी आकाश में है। परिछिन्नता का अर्थ होता है भिन्नता, भेद। परिछिन्न कहते हैं भिन्न को। तो वायु तो आकाश नहीं है, आकाश तो है अवकाश, और अवकाशात्मक आकाश में भ्रमण करने वाला है ये वायु। तो आकाश नामक पांच भूतों में से तो आकाश नाम का भूत है, उससे बाकी चार भूत अलग है कि नहीं, भिन्न है कि नहीं, और उन वायु तेज जल पृथ्वी इनसे आकाश भिन्न है कि नहीं। तो भिन्न का ही नाम है परिछिन्नता। ये वस्तु हुई वायु तेज जल पृथ्वी, ये वस्तु है, और इन वस्तु यानी पदार्थ। तो इन वायवादी पदार्थों से आकाश भिन्न है, अलग है, इसलिए वस्तुकृत परिछिन्नता भी आकाश में है। तो देशकृत अपरिछिन्नता आकाश में होने पर भी कालकृत तथा वस्तुकृत परिछिन्नता ही आकाश में होने के कारण आकाश को आप पूर्ण नहीं कह सकते। तो आकाश पूर्ण न होने पर भी ये जो ब्रह्म की उपाधि है तत्पद वाच्यार्थ की माया अव्याकृत जिसको कहते हैं प्रकृति जिसको कहते हैं वह पूर्ण होगी कि नहीं, तो कहते वो भी पूर्ण नहीं है। यहां केवल तत्पद का जो लक्षार्थ है ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म उसे ही पूर्ण कहा जा रहा है। आकाश जैसे देश से अपरिछिन्न है ऐसे आकाश की परिणाम उपादान कारण माया भी यद्यपि देश से अपरिछिन्न है और लेकिन काल से वह परिछिन्न होगी कि अपरिछिन्न होगी, परिछिन्न ही हो जाती है। इसलिए कि आपको ये अनादि होने पर भी गीता में भगवान ने प्रकृति को अनादि कहा है, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। हे अर्जुन तुम प्रकृति को यानी उपाधि भूत कारण उपाधि जो माया है त्रिगुणात्मिका इसे अनादि समझो और पुरुष को यानी ब्रह्म को भी अनादि जानो। अनादि तो है लेकिन ये अनादि होने पर भी शांत है, उत्पन्न तो नहीं हुई लेकिन मरती है यानी नष्ट होती है, मरने का अर्थ है नष्ट होना। जब आपको अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो जाए परमात्मा के अनुग्रह से तो ये अज्ञान अविद्या माया नहीं रहती। मायाम एताम तरंतिते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान ने कहा यद्यपि मेरी जो माया है बड़ी दुरत्यया है, उसका अतिक्रमण करना कठिन है, लेकिन जब परमात्मा का आत्म रूप से अनुग्रह होता है यानी साक्षात्कार होता है तो वे इस माया का भी अतिक्रमण करते हैं, उनकी माया निवृत्त हो जाती है। तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, अज्ञान ही तो प्रकृति है अव्याकृत। तो ज्ञान दशा में अज्ञान नहीं रहेगा, माया नहीं रहेगी, लेकिन वहां पर भी ब्रह्म है तत्पद लक्षार्थ, इसलिए वो भी एक प्रकार से यहां पूर्ण नहीं है। मोक्ष दशा में मुक्ति अवस्था में अविद्या नहीं रहती है लेकिन मुक्ति अवस्था में इसे जिस अधः शब्द से यहां पर जिसे कहा जा रहा है वह मुक्ति दशा में भी विद्यमान है, मोक्ष में भी है। तो इसलिए और वस्तु से भी अपरिछिन्न है ब्रह्म। वस्तु से अपरिछिन्न कैसे हैं? कहते वस्तु यानी ये पदार्थ जो भी आप देख रहे हैं क्षेत्र मात्र, इस प्रकृति से लेकर के प्राकृत जितना भी जगत देख रहे हैं प्रकृति का परिणाम रूप उसे प्राकृत कहा जाता है। प्रकृति का विकार प्राकृत वो है पंचभूत और पंचभूतों से बना हुआ भौतिक जगत सारा का सारा प्राकृत है। तो ये प्रकृति भी और प्राकृत जगत भी वेदांत सिद्धांत के अनुसार आत्मा में कल्पित है, ब्रह्म में कल्पित है। कैसे? तो कहते हैं जैसे मंद अंधकार में रस्सी के अज्ञान से रस्सी में सर्प कल्पित होता है, कल्पना हो जाती है, आरोप हो जाता है रस्सी में सर्प का, ऐसे ही ये प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत वेदांत सिद्धांत के अनुसार आत्मा में अध्यारोपित हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकृति अनादि होने पर भी वह सांख्यों के तरह स्वतंत्र वेदांत में नहीं है, वो परमात्मा की सत्ता से सत्तावान है, ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान है। तो ये जो जैसे सर्प रस्सी में कल्पित होने से वह रस्सी से अलग नहीं है, कल्पित का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान हुआ करता है। तो जब किसी को आपको किसी से भिन्न दिखाना है, जिससे भिन्न दिखाना है उसका, जिसको भिन्न दिखाना है उससे अलग अस्तित्व पहले दिखाना पड़ेगा, तब तो एक दूसरे का भेद दिखाया जा सकता है। ब्रह्म को आप जिससे भिन्न दिखाना चाहेंगे उसका पहले बिना ब्रह्म की सत्ता की अपेक्षा किए अस्तित्व दिखाना पड़ेगा कि ये ब्रह्म के बिना विद्यमान वस्तु है। ऐसी कोई वस्तु हो तब तो उस वस्तु से भिन्न करके ब्रह्म को दिखाया जाए, लेकिन ऐसी कोई वस्तु आपके पास है नहीं जो ब्रह्म की सत्ता के बिना, ब्रह्म की सत्ता की अपेक्षा के बिना सिद्ध हो, स्वतंत्र। इसलिए ब्रह्म में वस्तुकृत परिच्छिन्नता भी नहीं दिखाई जा सकती। ब्रह्म की सत्ता से ही तो सभी के सभी सत्तावान हैं, इसलिए ब्रह्म को कहा जाता है पूर्ण। पूर्ण वो है जो देश से भी भिन्न न होता हो, देश से भी अपरिछिन्न हो, काल से भी अपरिछिन्न हो और वस्तु से भी अपरिछिन्न हो। ये जो परिछिन्न करने वाले देश, काल और वस्तुएं हैं, इन तीनों का भी अधिष्ठान है। यहां पर अध शब्द से जिसको बताया जा रहा है ब्रह्म को, उसी की सत्ता से वे सत्तावान हो रहे हैं। तो जिसकी सत्ता पाकर के बाकी वस्तुओं को परिछिन्न कर रहे हैं, देश काल वस्तुएं, वे जिससे सत्ता पा रहे हैं उस ब्रह्म को भिन्न नहीं कर सकते। ये यहां पर एक प्रकार से ध्यान में रख करके इस मंत्र के प्रथम दो शब्दों ने कहा कि अदह पूर्णम, ये जो ब्रह्म है, क्या नाम, ब्रह्म है तत्पद का लक्ष्य, वह पूर्ण है, तत्पदार्थ को पूर्ण बताया। तो कहा यदि तत्पदार्थ पूर्ण है तो त्वम पदार्थ की क्या स्थिति है? तो पूर्णम पूर्णमिदम, इदम पूर्णम, तो इदम का अर्थ है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ, और त्वम पदार्थ भी त्वम पद का लक्षार्थ लेना, साक्षी, वो भी पूर्ण है। जैसे ब्रह्म पूर्ण है ऐसे त्वम पद का लक्षार्थ भी पूर्ण है, का मतलब देश से, काल से और वस्तु से अपरिछिन्न है, पूर्ण है का अर्थ। यहां भी पूर्ण शब्द का वही अर्थ है। कहे दो पूर्ण होंगे यदि तो दोनों की ही पूर्णता नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि वस्तु दोनों एक दूसरे से यदि अत्यंत भिन्न होंगे तो वस्तुकृत परिछिन्नता ही आएगी। परिछिन्नता का अर्थ ही होता है भिन्नता, भेद। तो ये दोनों पूर्ण तब हो सकते हैं जब दोनों एक हो, अन्यथा नहीं। नहीं तो दो हैं यदि और दोनों की स्वतंत्र सत्ता है, तो ये दो शब्द ही बता रहा है कि एक दूसरे से वे भिन्न हैं, स्वतंत्र सत्ता वाले हैं। तो वस्तुकृत परिछिन्नता होने से अपूर्णता ही सिद्ध हो जाएगी दोनों में भी। इसलिए कहते हैं कि भले ही ये दोनों उपाधि दशा में अलग अलग दो दिख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। ये दिखाने के लिए कहते हैं कि पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। कहते हैं जैसे शेर से उत्पन्न हुआ शेर का बच्चा बिल्ली नहीं होता, शेर ही होता है ना, ऐसे पूर्ण ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जो यह ब्रह्म जीव है ये भी पूर्ण है, अमृत का पुत्र है। तो पूर्ण ब्रह्म है और उससे ब्रह्म उत्पन्न हुआ जीव भी पूर्ण है का मतलब यहां पर ब्रह्म को कारण के रूप में और जीव को कार्य के रूप में बताया जा रहा है ना। तो जीव ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो किस प्रकार का कार्य है? तो यहां पर बताया जा रहा है कि औपाधिक ही उत्पत्ति है, जो पूर्ण ब्रह्म है वो निरवयव है, निरवयव होने से उसमें परिणाम नहीं हो सकता, जो सावयव वस्तु होती है उसी का परिणाम हुआ करता है। दूध सावयव है तो दूध का परिणाम दही बन जाता है, परिणाम कहा जाता है पूर्व अवस्था का त्याग, पूर्वक उत्तर अवस्था का ग्रहण। शरीर सावयव है तो इसका परिणाम है युवावस्था शरीर का, शरीर परिणामी है, पहले शिशु अवस्था में था तो शिशु अवस्था का त्याग और युवा अवस्था का ग्रहण, ये युवा अवस्था हुआ परिणाम शरीर का, परिणामी हुआ शरीर। ऐसे जैसे शरीर का युवा अवस्था परिणाम है, वृद्धावस्था परिणाम है, ऐसे क्या ब्रह्म का जीव परिणाम है कि ब्रह्म ने ब्रह्म भाव को छोड़ दिया और जीव भाव को ग्रहण कर लिया? जैसे शरीर ने शिशु अवस्था छोड़ी और युवावस्था धारण कर ली, युवावस्था को छोड़ा वृद्धावस्था धारण कर ली, क्या ऐसे ही ब्रह्म ने किया है? कहते ऐसा तो नहीं है, ब्रह्म तो निरवयव है इसलिए उसका परिणाम नहीं होगा, सावयव का परिणाम हुआ करता है। तो फिर ब्रह्म से पूर्ण से यानी ब्रह्म से पूर्ण की यानी जीव की उत्पत्ति कैसे बताई गई? तो कहते हैं जैसे महाआकाश से घटाकाश उत्पन्न होता है, तो ये जो घटाकाश है वो महाआकाश का परिणाम है क्या? कहते परिणाम नहीं है, बस घट उत्पन्न हुआ और अवकाशात्मक आकाश ने घट को, उत्पन्न हुए घट को अवकाश दे दिया, स्थान दे दिया रहने के लिए। अवकाश यदि, अवकाशात्मक आकाश यदि घट को रहने का स्थान न दे तो घट कहाँ रहेगा? बस अवकाशात्मक आकाश का उत्पन्न हुए घट को स्थान देने का नाम ही है महाकाश से घटाकाश का उत्पन्न होना। उत्पन्न हुआ घट और उत्पन्न हुए घट की उत्पत्ति का अध्यारोप होता है घटाकाश पर, माना जाता है घटाकाश की उपाधि घट के उत्पन्न होने से घटाकाश उत्पन्न हुआ ये कहा जाता है। उत्पन्न तो हुआ उपाधिभूत घट और उस उपाधिभूत घट से घिरे हुए आकाश को भी औपचारिक रूप से कहा जाता है कि घटाकाश उत्पन्न हुआ। तो ये घटाकाश की औपाधिक उत्पत्ति है, औपाधिक उत्पत्ति का अर्थ होता है उपाधि उत्पन्न हुई और उससे उपहित को औपचारिक रूप से कहा गया कि ये उत्पन्न हुआ। ऐसे वस्तुतः इदम शब्द का अर्थ उत्पन्न नहीं होता। पूर्णमिदम यहां पर जो कहा है, इदम शब्द का अर्थ है आत्मा जीव, इसकी भी वस्तुतः उत्पत्ति नहीं होती। जैसे घटाकाश की उत्पत्ति नहीं हुई, घट उत्पन्न हुआ और उसकी उत्पत्ति का अध्यारोप घट से घिरे हुए आकाश में हुआ, ऐसे उत्पन्न हुआ शरीर कार्यकरण संघात घटस्थानीय, और उस घटस्थानीय कार्यक्रम संघात से घिरा हुआ जो आत्मा है ब्रह्म है उसे कहा गया जीव। जैसे घटाकाश कहते हैं घट से घिरे हुए आकाश को, नहीं तो आकाश का तो ऐसा कोई अंश नहीं है ना, बस घट से घिरे हुए आकाश को आपने घटाकाश कहा, मठ से घिरे हुए आकाश को आपने मठाकाश कहा। ऐसे मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ और मनुष्य शरीर से अवच्छिन्न जो ब्रह्म है उसे कहा गया मनुष्य, और गाय का शरीर उत्पन्न हुआ गोपिंड, और उस गोपिंड से परिच्छिन्न जो ब्रह्म है उसे कहा गया गाय। ऐसे ही 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात उत्पन्न हुए घटस्थानीय, और उन कार्यक्रम संघातों की उत्पत्ति का अध्यारोप हुआ आत्मा की उत्पत्ति पर, वो औपाधिक उत्पत्ति है ऐसे। और ये कहा जाता है कि जो औपाधिक स्वरूप होता है उसका वास्तविक स्वरूप वो जिससे उत्पन्न हुआ है वो होता है। तो घटाकाश का वास्तविक स्वरूप महाकाश है, घट जब तक है तब तक महाकाश से भिन्न सा प्रतीत होने पर भी घटाकाश वस्तुतः महाआकाश से भिन्न नहीं है, और उसे घट के रहते हुए भी आप विवेक से घट से अलग करके घट से घिरे हुए आकाश को आप देखेंगे विवेक से, तो वह महाआकाश से अलग प्रतीत नहीं होगा, और घट के साथ मिला करके देखोगे तो महाआकाश के रूप में घटाकाश की प्रतीति नहीं होगी, और विचार से थोड़ा घटाकाश की उपाधि भूत घट को अलग कर दो और आकाश को अलग कर दो उपहित को, और घट रूपी उपाधि से अलग किए हुए आकाश को देखो तो वह महाआकाश से यत किंचित भी भिन्न प्रतीत नहीं होगा। वैसे यहां पर पूर्णात् पूर्णम उदच्यते इस वाक्य ने कहा कि कार्यक्रम संघात रूपी उपाधि की उत्पत्ति होने से उपाधि की उत्पत्ति का आरोप जीव के ऊपर हुआ और माना गया जीव उत्पन्न हुआ, लेकिन आप इस जीव को पूर्ण ही समझना, उसकी उपाधि उत्पन्न हुई है वह स्वरूपतः उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे घटाकाश स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होता, उपाधि की उत्पत्ति है। तो कहा यदि इदम शब्द का अर्थभूत तुम पद का लक्षार्थ भी पूर्ण है तो उसकी पूर्णता का अनुभव क्यों नहीं होता, ये किसी ने प्रश्न किया। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तरार्ध में कहा जैसे घटाकाश की महाकाश रूपता से अनुभूति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो घट को फोड़ना नहीं पड़ेगा, घट फूट जाए तब तो पूर्णता की अनुभूति घटाकाश की होगी ही, लेकिन घट को फोड़े बिना भी आप घटाकाश की महाआकाश के रूप में अनुभूति कर सकते हैं। विवेक से आप घट रूपी उपाधि से घट से घिरे हुए आकाश को अलग कर दो बुद्धि से विचार से, और विचार से उसे अपनी उपाधि से अलग देखोगे तो वह घट से अलग किया हुआ घटोपहित आकाश महाआकाश से आपको बिल्कुल भिन्न नहीं दिखेगा, महाकाश के रूप में ही गृहित होगा। ऐसे ये जो पूर्ण जीव है उसकी पूर्णता का अनुभव करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो पूर्ण जीव है उसका जो पूर्ण रूप है, जैसे घटाकाश का जो महाकाशात्मक रूप है, उसे ही देखने के लिए आपको विवेक से उसके उपाधि को अलग करना पड़ा और केवल अवकाश मात्र को देखा तो पूर्ण ही अनुभव में आया, महाकाश के रूप में अनुभव में आया। ऐसे जीव की उपाधि जो कार्यकरण संघात है इससे विचार से अलग कर लें। और जैसे तुम तत्पद का वाच्यार्थ उसकी उपाधि है समष्टि, उस समष्टि उपाधि से उसे अलग करके देखते हैं लक्षार्थ मात्र को भागत्याग लक्षणा से, तो वो पूर्ण रहता है। ऐसे वेष्टि उपाधि जो कार्यक्रम संघात है उससे अलग करके जो जीव का स्वरूप है उसे विवेक बुद्धि से देख लें, ऐसा जो विवेक करके देखता है उसे कहते हैं पूर्णम एवावशिष्यते, यानी विवेक से जीव का पूर्ण स्वरूप देखने वाले को पूर्णता की ही अनुभूति होती है। पूर्णमेवावशिष्यते का अर्थ है पूर्णता की ही अनुभूति होती है। शांति 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 ये तीन बार उच्चारण है, आध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक तीनों तापों की निवृत्ति के लिए। तो इस प्रकार ये पूर्णमदह इत्यादि का सामान्य रूप से अर्थ हुआ। कल थोड़ा बहुत विचार करके और स्पष्ट करेंगे। ओम पूर्णमदह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम। जय महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 28 नवंबर बुधवार, सबको मैं वंदन करता हूँ। अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।